समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
ओम जय श्री विश्वकर्मा। प्रभु जय श्री विश्वकर्मा। सकल सृष्टि के कर्ता, सकल सृष्टि के कर्ता, रक्षक श्रुति धर्मा।
सभी श्रोताओं को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ है मेरी सहयोगी तन्वी खुराना। नमस्कार तन्वी।
नमस्कार मनोज। गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। यस, यू हर्ड इट राइट। दिस इज आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे एंड टुडे इज 17th of September 2025 एंड बीइंग अ वेंसडे, लेट मी जस्ट विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वेंसडे एंड हैप्पी विश्वकर्मा पूजा टू ऑल ऑफ यू।
जी तन्वी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। वे धार में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान आज से अगले महीने की 2 तारीख तक देश भर के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और अन्य सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में आयोजित किया जाएगा। श्री मोदी इस अवसर पर कई अन्य पहलों का शिलान्यास और शुभारंभ भी करेंगे और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री देश भर की पात्र महिलाओं के बैंक खातों में सीधे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत धनराशि हस्तांतरित करेंगे। श्री मोदी मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सुमन सखी चैटबॉट का शुभारंभ करेंगे। सिकल सेल एनीमिया के खिलाफ देश की सामूहिक लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री राज्य के लिए 1 करोड़ सिकल सेल स्क्रीनिंग और परामर्श कार्ड वितरित करेंगे।
Union Home Minister Amit Shah is scheduled to inaugurate 15 developmental works this afternoon at Tyagraj Stadium in New Delhi. This includes hospital blocks, 101 Ayushman Arogya Mandirs, 150 dialysis centers, 75 drones for policing, and laying the foundation stone for 2 waste-to-energy plants, among others. The launch of these development projects comes under the Delhi government's 15-day Seva Pakhwada campaign being organized on the occasion of Prime Minister Narendra Modi's 75th birthday today. Commencing today, the campaign will continue till 2nd of October, the birth anniversary of Mahatma Gandhi and Lal Bahadur Shastri.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री ट्रंप ने श्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के समान वे भी भारत और अमेरिका की व्यापक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। श्री मोदी ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए श्री ट्रंप की पहल का भारत समर्थन करता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई बातचीत को शानदार बताया। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराने में सहायता के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार प्रकट किया।
Sports memorabilia gifted by India's para-athletes will be a key attraction at the 7th edition of the e-auction of Prime Minister Narendra Modi's mementos that will begin today. Union Minister of Culture and Tourism Gajendra Singh Shekhawat said the e-auction coincides with Seva Pakhwada, being organized across the country from today till 2nd of October to celebrate the Prime Minister's birthday. Mr. Shekhawat said that this year's edition will feature over 1300 items available for bidding on the official portal www.pmmementos.gov.in. The items are currently on display at the National Gallery of Modern Art, NGMA, New Delhi. A special highlight of this edition is the sports memorabilia gifted by India's para-athletes who participated in the Paris Paralympics 2024. The first auction of PM mementos was held in January 2019. Since then, thousands of unique gifts presented to Prime Minister Modi have been auctioned, raising more than 50 crore rupees in support of Namami Gange project. He is the first Prime Minister of India to dedicate all mementos he receives towards this noble cause.
नेपाल आज पिछले सप्ताह सरकार विरोधी हिंसक आंदोलन के दौरान मारे गए युवा प्रदर्शनकारियों की मृत्यु पर शोक मनाएगा। सरकार ने प्रदर्शनों के दौरान मारे गए सभी लोगों की याद में 17 सितंबर यानी आज शोक दिवस घोषित किया है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कम से कम 59 प्रदर्शनकारी, 10 कैदी और 3 पुलिसकर्मी मारे गए। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कहा कि 8 और 9 सितंबर को विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों को शहीद घोषित किया जाएगा।
From humble beginnings to becoming one of the most influential political figures in the world, Narendra Modi's journey has been extraordinary. As India's Prime Minister, his leadership has drawn admiration and curiosity. But beyond the headlines and policies, who is the man behind the office? And what has been his impact on India and the world? In this special story, we bring you voices of select eminent personalities who reflect on Narendra Modi, the person and the Prime Minister.
That Prime Minister Modi is possibly the best Prime Minister India has ever had. Prime Minister Modi has almost made sure that almost all Indians have a roof over the head, water in the tap, power in the switch, a toilet in the house, a gas stove, a bank account, money in the bank, an internet connection, a mobile phone, food on the table, education for children, a road to the house, and health insurance.
These words of TV Mohandas Pai, an entrepreneur, summarize the impact of Prime Minister Narendra Modi in India. He has taken care of the basic needs of Indians in very large numbers. He has also been a successful global leader. Martin Schulz, former president of the European Parliament, said,
And on international levels, India became an important player to defend a rule-based relationship between countries in the world.
Noted Bhajan singer Anup Jalota said that PM Modi has placed India in a respectable position in the world.
Modi ji ne is desh ko jo samman dilaya hai, jo shakti di hai, wo abhi tak kisi bhi pradhanmantri dwara nahi prapt hui.
Even PM Modi's foreign policy has kept the interests of weaker sections at its heart. Ambassador Dr. Mohan Kumar from the policy think tank RIS said,
He has also made sure that the foreign policy serves the interests of the weaker sections of India. More recently, he has said he will never sacrifice the interests of farmers or people who are small and medium entrepreneurs.
Narendra Modi's impact is driven by the fact that he is a self-made politician. Senior journalist Shekhar Gupta summarized this.
इस पीढ़ी में मोदी जी self-made नेताओं में से एक हैं, तो वो एक unique phenomenon है भारतीय politics.
PM Modi's political success is also rooted in being a kind-hearted person, as singer Asha Bhosle said.
सभ्य पुरुष मैंने इसलिए कहा कि लोग गाली-गलौज करते हैं, हम सुनते हैं ना, मैंने कभी उनके मुंह से किसी के लिए बुरा नहीं सुना, मुझे ऐसा लगा कि बहुत सभ्य और अच्छे दिल के इंसान हैं।
N. Chandrasekharan, the chairman of the Tata Group, recalled PM Modi's tremendous focus in a meeting.
The most striking thing in the very first meeting was his ability to listen. He was completely in the present.
Sudha Murthy, author and philanthropist, expressed admiration that PM Modi is working like a youngster even at the age of 75 years, with a sense of duty towards humanity.
He worked very hard towards nation and still working like a youngster even though he's 75. Loka hitam mama karaniyam is probably his mantra and which he has followed throughout his life.
Narendra Modi's story is more than just politics. It's about a vision for India's future. A vision that has sparked hope, challenged traditions and reshaped dreams. A vision that continues to write the story of India's tomorrow.
The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall at isolated places over Bihar, East Uttar Pradesh, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. Parts of Madhya Maharashtra, Marathwada, Konkan and Goa, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Telangana, Assam and Arunachal Pradesh are also expected to receive light to moderate rainfall throughout the day. The weather department further predicted thunderstorms and lightning in parts of the Andaman and Nicobar Islands today. Weather conditions over the Andaman and Nicobar region are expected to remain the same till 22nd of this month. According to the Met Department, strong surface winds are likely to prevail today at isolated places over Andhra Pradesh.
भारत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा आज जापान के टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में एक और उपलब्धि हासिल करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे. चोपड़ा ग्रुप ए में जर्मनी के डायमंड लीग चैंपियन जूलियन वेबर, 2012 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कैशोर्न वालकॉट, चेक गणराज्य के अनुभवी जैकब वडलेज और साथ ही भारतीय खिलाड़ी सचिन यादव के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे. मुकाबले भारतीय समयानुसार दोपहर 3:40 से शुरू होंगे. ग्रुप बी में पाकिस्तान के अरशद नदीम, ग्रेनाडा के दो बार के विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स, 2015 के विश्व चैंपियन जूलियस येगो, ब्राजील के लुइस दा सिल्वा, भारत के रोहित यादव और यशवीर सिंह के साथ श्रीलंका के खिलाड़ी रुमेश थरंगा पथिरगे शामिल हैं. कल होने वाले फाइनल के लिए कुल 37 प्रतियोगी 12 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे. महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता अन्नु रानी भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगी. महिलाओं के क्वालिफायर शुक्रवार को खेले जाएंगे जबकि फाइनल मुकाबले शनिवार शाम 5:35 से शुरू होंगे. अब रुख करते हैं महानगरों के समाचारों का. पहले दिल्ली की खबर. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिव्यांगों के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की है जिसमें दिव्यांग जनों को प्रतिमाह 6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस योजना का उद्घाटन करेंगे. श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने समाज के सबसे कमजोर और संवेदनशील वर्गों के लिए ये ऐतिहासिक निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग जनों की देखभाल करने वाले सहायक का खर्च, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, मनोवैज्ञानिक परामर्श, सहायक उपकरणों तथा अन्य आवश्यक सहयोग सेवाओं के लिए है.
And let's talk about Chennai. The National Institute of Ocean Technology is developing multiple technologies under the Mission Mausam project to improve weather forecast accuracy. Researchers was built the buoy platform, mooring systems, fuel cell battery technology and data management systems. These will be integrated with the compact radar developed by the National Atmospheric Research Lab at Tirupati with staged trials. Balaji Ramakrishnan, director NIOT, said that a 300-meter LIDAR demonstration will take place by the end of 2026. He informed that by next year, a full prototype covering up to 10 kilometers in the sky from the ocean surface with indigenous technologies will be in place.
Ab Maharashtra ki khabar. उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज से 2 अक्टूबर तक महाराष्ट्र के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करेगा. ये कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के माध्यम से आयोजित किए जाएंगे. उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल ने कॉलेज के विद्यार्थियों से बड़ी संख्या में भाग लेने का आग्रह किया है. श्री पाटिल ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य विकसित भारत 2047 मिशन के तहत तहत विद्यार्थियों को प्रेरित करना है, जिसमें विकसित भारत संवाद, ऑनलाइन व्याख्यान श्रृंखला, रक्तदान और स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम और सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल हैं। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 भी मनाया जाएगा, जिसमें 25 सितंबर को सार्वजनिक स्वच्छता अभियान और एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता शपथ जैसे विशेष अभियान शामिल होंगे।
And let's talk about Bengaluru. Karnataka Higher Education Minister Dr. M.C. Sudhakar has informed that the state government has approached Asian Development Bank to strengthen higher education and skill development infrastructure across the state. He was speaking at the 17th edition of Manthan, organized by the Federation of Karnataka Chambers of Commerce and Industry in Bengaluru yesterday. The credit from ADB will equip government colleges students with aptitude to become job creators. It is also proposed to establish 9 centers of excellence at the engineering colleges and polytechnics with a tie-up with original equipment manufacturers for offering hands-on exposure, certifications and training modules to the students. The graduates will collaborate with the entrepreneurs with access to AI-driven technologies and nurture innovative business models in the shape of startups. The minister also added that the students will be treating industry exposure as an integral part of their education.
Ab Kolkata, Pashchim Bengal ki khabar. ऑपरेशन सद्भावना के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता यात्रा कल राजभवन कोलकाता में आयोजित की गई। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल डॉ. आनंद बोस ने युवा प्रतिभागियों से बातचीत की। ये यात्रा भारतीय सेना के उस उद्देश्य का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों के युवाओं के दायरे को व्यापक बनाना है और उन्हें भारत की प्रौद्योगिकी, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समृद्धि से परिचित कराना है। ये विकसित भारत की भावना का परिचायक है।
And let's talk about Hyderabad. Hyderabad Liberation Day is being celebrated today across the state. Telangana state marking the merger of the then Hyderabad state in the Union of India after the Operation Polo. To commemorate the integration of the erstwhile princely state of Hyderabad in the Indian Union on this day in 1948, Union Culture Ministry is celebrating this occasion on a grand scale at the parade grounds in Secunderabad. Defence Minister Rajnath Singh, who arrived in Hyderabad last evening, will be leading the Hyderabad Liberation Day celebrations. Union Ministers G. Kishan Reddy, Gajendra Singh Shekhawat, Bandi Sanjay Kumar, among others, will also be attending the event. The event will witness a special parade by units of paramilitary forces and cultural presentations. Later, Rajnath Singh will be unveiling a statue of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee at the Cantonment Park close to the parade grounds. On the other hand, the state government is celebrating the occasion officially as Praja Palna Dinotsavam, means People's Governance Day. Chief Minister Revanth Reddy will be hoisting the national flag at the ceremonial event being held at Public Gardens in Hyderabad, while the ministers and other designated dignitaries will hoist tricolour at the headquarters of districts. Two separate events have been held by the state and the central government to mark the day for the past few years.
और अब महानगरों दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल जानते हैं। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। यहां का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में बादल छाए रहेंगे और मध्यम वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में आम तौर पर बादल छाए रहने और एक या दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं तन्वी से।
Chennai is expected to have partly cloudy sky with the possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature was 24 degrees and the maximum will be around 34 degrees. And Bengaluru and Hyderabad both are expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. About the temperature, Bangalore's minimum temperature was 21 degrees Celsius and maximum will be around 28 degrees. And about Hyderabad, the temperature will hover somewhere between a minimum of 23 degrees and a maximum of 31 degrees Celsius.
और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का. आज 17 सितंबर है.
Let's begin with 1787, when US Constitution was signed by delegates at the Philadelphia Convention.
1948 में आज ही के दिन हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हुआ.
In 1934, Gandhiji announced his decision to retire from politics from October 1st to engage himself in the development of village industries, Harijan service and education through basic crafts.
1949 में आज ही के दिन दक्षिण भारतीय राजनीतिक दल द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना हुई.
And if we talk about the year 1940, Adolf Hitler indefinitely postponed Operation Celion, the planned German invasion of Great Britain. In the year 1950, government granted diplomatic recognition to Israel.
1982 में आज ही के दिन भारत और सिलोन श्रीलंका के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया.
In the year 1976, NASA unveiled its first space shuttle, the Enterprise.
1956 में आज ही के दिन भारतीय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का गठन हुआ.
In the year 1983, Vanessa Williams became first black Miss America.
2006 में आज ही के दिन हवाना में गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन हुआ. आज ही के दिन 2006 में भारतीय वायुसेना की स्पेशल फोर्स यूनिट गरुड़ कमांडो कांगो के शांति मिशन पर रवाना हुआ. और अब याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका जन्मदिन जयंती या पुण्यतिथि है.
So let's begin with the personality and he is Kalamandalam Venamani Haridas. Today is his death anniversary. He was an Indian Kathakali musician noted for his rendition of the Kathakali Padams, that is, playback songs for the characters in the classical Kerala dance drama. Born in Venamani, and he developed interest in Kathakali by watching performances of the classical dance drama in the neighboring Akkavur Mana. He was taught the basics in music by Mundakal Sankara Varier. He learned padams from stories like Rukmini Swayamvaram and Kuchela Vritam. So let's hear one of his creations.
Riduparna Tharani Pahala Nijayi Kedam Riduparna Tharani Pahala Nijayi Kedam Riduparna Tharani Pahala Nijayi Kedam.
आज पुण्यतिथि है मद्रास राजगोपालन राधा कृष्णन की. उनका जन्म 14 अप्रैल 1907 को मद्रास में हुआ था. वे एक भारतीय अभिनेता और राजनेता थे. वे तमिल नाटकों और फिल्मों में सक्रिय थे. पेरियार ईवी रामा स्वामी द्वारा उन्हें नादी गावेल अर्थात अभिनय के राजा की उपाधि दी गई थी. उन्होंने तमिल फिल्मों में अधिकतर खलनायक की भूमिकाएं निभाई, लेकिन कई फिल्मों में हास्य अभिनेता के रूप में भी उन्होंने काम किया. आइए सुनते हैं उनका एक गीत. आज जन्मदिवस है सीताकांत महापात्रा का. उनका जन्म 17 सितंबर 1937 को उड़ीसा में हुआ है. उनकी कविता का काव्य संसार यथार्थ और अनुभूति के सोलेन सम्मिश्रित से निर्मित हुआ है. उनकी कविताओं का सांस्कृतिक धरातल उनके अनुभव की उपज है. अतीत के जिस झरोके से सीताकांत महापात्रा गांव की पगडंडी तालाब नदी घर मंदिर सूर्योदय ढलती शाम व मानवीय संबंधों इत्यादि का अवलोकन करते हुए सहजता से अपनी कविता में अभिव्यक्त करते हैं उससे अनायास ही पाठक बंध जाते हैं. सन 1993 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.
And today is the birth anniversary of Lalgudi Gopal Iyer Jayaraman, an Indian Carnatic violinist, vocalist and composer. He is commonly grouped with M.S. Gopalakrishnan and T.N. Krishnan as part of the violin trinity of Carnatic music. He was awarded the Padma Bhushan by the Government of India in 2001. His disciples included his two children and his sister, and apart from that, the former composer-conductor of All India Radio's Vadya Vrinda National Orchestra, P. Purnachandar Rao, and many more renowned names are there. So let's hear one of his beautiful renditions.
आज जयंती है मकबूल फिदा हुसैन की. उनका जन्म 17 सितंबर 1915 को मुंबई में हुआ था. वे प्रसिद्ध चित्रकार थे जिनका पूरा जीवन चित्रकला को समर्पित था. उन्होंने रामायण, गीता, महाभारत आदि ग्रंथों में उल्लिखित सूक्ष्म पहलुओं को अपने चित्रों के माध्यम से जीवंत बनाया है. ये एक फिल्मकार भी थे. इनकी मुख्य फिल्मों में थ्रू द आईज ऑफ अ पेंटर, मीनाक्षी, गजगामिनी आदि शामिल हैं. मकबूल फिदा हुसैन को कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था. आइए सुनते हैं इनके द्वारा निर्मित फिल्म गजगामिनी का एक गीत.
मेरी पायल बोले छम 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 छम
Today is the birthday of Paul Feig, an American film director, producer, screenwriter and actor. And if you have seen the movies Bridesmaids, The Heat, Spy, Ghostbusters, A Simple Favor or even Last Christmas, then you know him because he has directed these films.
आज पुण्यतिथि है हसरत जयपुरी की. उनका जन्म नाम इकबाल हुसैन था. उनका जन्म 15 अप्रैल 1922 को जयपुर में हुआ था. वे एक भारतीय कवि थे जिन्होंने हिंदी और उर्दू भाषाओं में रचनाएं की. वे हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध गीतकार भी थे जहां उन्हें 1966 में फिल्म सूरज के लिए गीत बहारो फूल बरसाओ और 1972 की फिल्म अंदाज के गीत जिंदगी एक सफर है सुहाना के लिए दो बार श्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था. आइए सुनते हैं इन गीतों को.
जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. अरे ओले ओले ओ, ओले ओले ओ, ओले ओले ओ, ओले ओले ओ, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है. हवाओं रागनी गाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब.
Hasrat Jaipuri. He has written many songs and many beautiful songs in Hindi, and he has also used Urdu language as well. So there's a song written by him and it's a very sweet song, and let me just share a very sweet story behind the same, but let's hear the song first.
Ye mera prem patra padhkar ke tum naraaz na hona ke tum meri zindagi ho ke tum meri bandagi ho ye main.
So he began writing the verse when he was around 20 years old, and around the same time he fell in love with a neighborhood girl named Radha, and he talked about a love letter he wrote to this girl, but there is no contribution that says that he actually gave the letter to that girl. And Raj Kapoor loved the lyrics and he used it in his film Sangam. Ye mera prem patra padhkar ke tum naraaz mat hona.
Ji. और आज जयंती है अनंत पै की. उनका जन्म 17 सितंबर 1929 को कारकल कर्नाटक में हुआ था। वे भारतीय शिक्षा शास्त्री कॉमिक्स तथा अमर चित्र कथा के संस्थापक थे। और अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं पर समाप्त करने की।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात आर हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे। नमस्कार।